درود بھیجے گا محمد وعلی محمد پر, صلی علی محمد محمد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں مولانا صاحب سے دو باتیں کہہ رہا تھا. پہلے میں نے کہا کہ جعفر بھائی نے اتنا شکریہ ادا کر دیا, لگتا ہے میری اسپیچ کینسل ہو گئی ہے, معاملہ ختم ہو چکا ہے. پھر میں نے ان سے کہا کہ آپ چائے وائے پی کے آ جائیں, ٹھنڈے ہو جائیں, اس کے بعد میں اس دوران نپٹا لوں یہاں کو. خیر, تو میرے پاس جو ٹاپک ہے وہ میڈیا کے حوالے سے, اور یہ بہت انٹرسٹنگ ٹاپک ہے. صرف یہ ہے کہ ہے خطرناک. انٹرسٹ تو ظاہر ہے اس کے اندر سبھی کا ہے, لیکن مسئلہ خطرناک ہے. اچھا, جو مجھے بات کرنی ہے وہ میڈیا کے رول کے اوپر بات کرنی ہے, تربیت میں میڈیا کے رول کے اوپر, اور اس سلسلے میں کچھ پوائنٹس میں ڈلیور کروں گا. تقریباً سکون سے کہہ سکتے ہیں کہ اس طرح سے کام ہوگا نہیں, تقریباً سکون سے کہہ سکتے ہیں. جو مولانا صاحب کے ساتھ ہوا, جو میرے ساتھ اب ہوگا, اس سے بات بنے گی نہیں. اس کے لیے آپ کو کچھ اور کرنا پڑے گا, کوئی اور طریقہ کار لانا پڑے گا. 40 منٹ میں آپ, جیسے انہوں نے فرمایا تھا, اس میں 3-4 اشرے تو مولانا صاحب نے کہہ ہی دیے کہ 4 اشرے چاہیے. آپ دیکھیے کدھر تک بات پہنچے گی. تو ریئلٹی یہ ہے کہ ہم لوگ جو اس وقت کر رہے ہیں, اس میں ہم لوگ ایک بک کے کانٹینٹس کو لسٹ کر رہے ہیں, اس سے زیادہ نہیں کر رہے. اور جو مولانا صاحب کے سامنے مشکل تھی وہ یہی تھی کہ بھائی 40 منٹس میں اگر آپ چاہیں گے کہ اس کو ایڈریس کر لیں تو شکریہ برادر, تقریباً ناممکن ہے. تو اب یہ ہے کہ میری کوشش یہ ہوگی کہ میں مین پوائنٹس آپ کی خدمت میں عرض کر دوں کہ بھائی یہ چیزیں ہیں جس کے اوپر ہم تھوڑا سا, کبھی موقع ملے تو آپ اس کے اوپر کام کر لیجیے گا, اور کبھی موقع ملے تو ہم بھی اس کے اوپر کچھ نہ کچھ محنت کرتے رہیں گے. ایک مسئلہ, اچھا کچھ ایسی چیزیں جس کو فوراً اسکپ کرنا چاہیے تاکہ ہم وقت کی اس کمی کو کسی طریقے سے کمپنسیٹ کر لیں. یہ کہ میڈیا کسے کہتے ہیں, میڈیا کے بارے میں تھوڑا سا ایک پوائنٹ بس عرض کرتا چلوں کہ آپ میڈیا کو صرف ٹیلی ویژن یا انٹرنیٹ مت سمجھیے. یہ جو آپ ظاہر ہے یہاں سے باہر نکلے اور ایک سائن بورڈ لگا ہوا ہے, یہ بھی تو میڈیا ہے نا. یہ بھی ایک, یعنی ہر وہ چیز جو ایک میڈیم بنی ہوئی ہے میسج کے لیے, در حقیقت ایک میڈیا ہے. تو اس وقت جو آپ کے ہاتھ میں موبائل فونز ہیں وہ ایکچولی ایک میڈیا ہے, چونکہ اس میں سب کچھ وہ نہیں آ رہا جو آپ نے چاہا تھا, بہت کچھ دوسروں کی طرف سے بھی آ رہا ہے. تو یہ بھی ایک میڈیا ہے, اور آپ کے جو سائن بورڈس ہیں یہ میڈیا ہے, اور مثلا ایک طرح سے کہہ سکتے ہیں مثلا جتنے بینرز لگے ہوئے یہ سب میڈیا ہیں, یہ سب میڈیا کا حصہ ہے. کچھ وہ میڈیا ہے جو آپ نے کریٹ کیا ہے, کچھ وہ میڈیا ہے جو دوسروں نے کریٹ کیا اور آپ اس کے اندر زندگی گزار رہے ہیں. تو میڈیا, ایک تو میڈیا کی ڈیفینیشن کو تھوڑا سا براڈ کر لیا جائے تاکہ ہمیں یہ سمجھ میں آ جائے کہ ہم جس چیز سے بات کر رہے ہیں وہ کہاں تک جا رہی ہے. البتہ اوبویسلی ہم اس وقت اس میڈیا کے بارے میں تذکرہ نہیں کر رہے, ہم اس میڈیا کا تذکرہ کر رہے ہیں جو ہم نے کریٹ نہیں کیا, دوسروں نے بنایا ہوا ہے. مشکل ہمارے ساتھ یہ ہے کہ اگر میڈیا کو ایسی چیز ہوتی جو چھوڑی جا سکتی ہوتی, ہم یہ کہتے کہ اس کو آپ اسکپ کر دیں اپنی لائف سے, تو شاید پھر اتنا پرابلم نہیں ہوتی. لیکن میڈیا ایک ایسا ایشو ہے جس کو آپ اسکپ نہیں کر سکتے, اور حتیٰ کچھ چیزوں سے شاید بچ سکتے ہیں, لیکن بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جس سے ناقابل اجتناب ہے, انیویٹیبل. آپ کو اس کے سامنے سے گزرنا ہے, آپ نے اس سے کچھ نہ کچھ میسیجز دیکھنے, کتنا ریسیو کرنا ہے یہ آپ کے ہاتھ میں, یہ آپ کے ہاتھ میں. لیکن یہ کہیں کہ میں اوائڈ کروں گا تو آپ نے روڈ پہ تو آنا ہی ہے بالآخر. اخبار, ٹی وی, انٹرنیٹ, موبائل, کہیں نہ کہیں تو آپ نے کھولنا ہے, اور جیسے آپ کھولیں گے آپ میڈیا کی زد پہ آ گئے. یہ ایک پرابلم میڈیا کی, بس ایک تو ایک اس کی ڈیفینیشن کو تو اسے براڈ کر لیجیے, دوسرا یہ کہ انیویٹیبل ہے, اس کو آپ چھوڑ نہیں پائیں گے. تیسرا مسئلہ یہ ہے کہ آیا اس کے اندر کچھ ڈیلیبریٹ میسیجز ہیں یا یہ کچھ اور چیز ہے اور اس کے پیچھے میسیجز نہیں ہیں. یہ کوشچن میں نے کیوں کیا, اس کی وجہ یہ تھی کہ ایک دفعہ میں کہیں پہ بات کر رہا تھا, کوئی سیمینار تھا, تو اس میں بات ہوئی ہالی ووڈ کی موویز کے اوپر کہ ان کا کچھ پولیٹیکل میسیج ہے. تو ایک دوست نے کھڑے ہو کر کہا کہ میں نہیں سمجھتا کہ یہ جو ہالی ووڈ یا دوسرے فلم کی انڈسٹری ہے اس کا کوئی پرٹیکولر میسیج ہے, یہ صرف انٹرٹینمنٹ ہے. پہلے آپ اس کو کلیئر کر لیجئے, آیا ان کا کوئی میسیج بھی ہے یا صرف انٹرٹینمنٹ ہے. تو اس میں یہ ہوگا کہ آپ کی شارپنیس بڑھ جائے گی اگر آپ کو یہ پتا ہو کہ اس کے پیچھے کوئی میسج بھی ہے. تو یعنی ہمارے سامنے جو کوشچن آئے گا وہ یہ کہ یہ جو میڈیا ہمارے سامنے آ رہا ہے, مثال کے طور پر ایک ایڈورٹیزمنٹ آیا ہے جس میں اس نے مثلاً اورنج جوس بیچنا ہے, آیا اس کا سارا ہدف, پورا اس کا ایشو بس یہ ہے کہ اس کو اورنج جوس بیچنا ہے, یہ ہے کہ نہیں اس کے پیچھے کوئی اور پارٹی بھی انوالو ہوئی ہوئی ہے, اس کے کچھ اور آبجیکٹیوز بھی ہیں, اورنج جوس بھی ہے, اورنج جوس بھی بکنا ہے اس کے اندر. تو میرا اپنا یہ خیال ہے کہ یہاں یہ دونوں کام ہونے ہیں, ایک تو ایک ان کو جو کچھ بیچنا ہے وہ بھی بیچنا ہے, لیکن اس کے پیچھے اس سے بڑی چیزیں بھی ہیں جو وہ کام کر رہے ہیں. اچھا وہ خود کہتے بھی ہیں, آپ یونیورسٹی میں اس کے اوپر ایجوکیٹ کرتے ہیں, تو بہت مشکل ہے کہ ہم یہ کہیں کہ وہ اپنی یونیورسٹیز میں اس پہ ایجوکیشن دے رہے ہوں گے, پوسٹ پی ایچ ڈیز کروا رہے ہوں گے, اور اس کے بعد اس کو کہیں امپلیمنٹ نہیں کرتے. وہ اس کے اوپر امپلیمنٹیشن کرواتے ہیں, ان کو بہت اچھی طرح پتا ہے کہ اگر ان کو کسی میسج کو سوسائٹی تک پہنچانا ہے تو اگر وہ یہ کہیں گے کہ آج ایک پروگرام ہم آپ کے سامنے دے رہے ہیں جس میں ہم اپنی پولیٹیکل انالیسس کو آپ کو سکھائیں گے, تو میرے خیال میں 70% آڈینس تو ویسے ہی نکل جائے گا, وہ ان کو پولیٹیکل انالیسس نہیں سیکھنا ہے آپ سے. اور اگر وہ یہ کہیں گے کہ ہم آپ کو تھوڑی دیر کے بعد ایک مووی دکھائیں گے اور یہ مووی جو ہے وہ یہ اوارڈ لے چکی ہے, اب اس کے اندر 50% پولیٹیکل انالیسس ہوگا, لیکن وہ آپ کو نہیں بتائیں گے, آپ کو مووی دکھائیں گے اور آپ مووی دیکھیں گے اور وہ پولیٹیکل انالیسس آپ خود بخود سیکھیں گے اس کے اندر. ایک رول میرا ذہن کہتا ہے وہ یہ کہ اگر کسی سے کسی دشمن سے ایکسپیکٹیشن دیکھنی کہ کہاں تک جائے گا, تو آپ یہ دیکھیں اس کے پاس جو ٹولز ہیں, جو پاسبل ٹولز ہیں وہ کون کون سے ہیں. اگر کوئی پاسبل ٹول کسی دشمن کے پاس ہے اور وہ استعمال کر سکتا ہے اور آپ کا ایزمپشن یہ کہ اس نے استعمال نہیں کیا, تو یہ ایزمپشن غلط ایزمپشن ہے. دوبارہ دہرا دیتا ہوں, اگر آپ کا کوئی ایک دشمن ہے, اس دشمن کے پاس کوئی ٹول ہے اور اس کے پاس پاسبلٹی ہے کہ اس کو استعمال کرے, اب آپ یہ کہیں اس نے استعمال نہیں کیا, کیوں احمق ہے کیا وہ استعمال نہیں کرے گا؟ آپ کے ساتھ رحم دلی میں استعمال نہیں کرے گا کیا؟ تو ان کے پاس ایک ٹول ہے, ہالی ووڈ ان کا ایک ٹول ہے, میڈیا ان کا ایک ٹول ہے, اس ٹول کو وہ ایک چیز میں آبویسلی استعمال کر رہے ہیں, وہ جو میری مثال میں اورنج جوس ہے, اورنج جوس بیچ رہے ہیں, اس کے پیچھے کچھ اور میں استعمال نہیں کریں گے. کیوں نہیں کریں گے؟ ان کے اپنے میسیجز ہیں جو ان کو کنوے کرنے ہیں آپ کو. تو اگر وہ آ کر کہیں گے کہ ہم نے ایک چینل شروع کیا ہے جو واشنگٹن ڈی سی سے وائٹ ہاؤس کی تھیوریز کو پروموٹ کرنے کے لیے ہے, تو کون بیوقوف اس چینل کو دیکھے گا؟ خود امریکنز نہیں دیکھیں گے. لیکن اگر وہ یہ کام کرتے ہیں جو اب وہ کر رہے ہیں کہ یہ ایک ہالی ووڈ کی مووی ہے, اس نے اتنے اتنے اوارڈ جیتے ہیں, اس میں فلاں فلاں ایکٹر کام کر رہا ہے, سب دیکھیں گے اور سب سیکھیں گے. تو دوسرا پرابلم یہ کہ آپ اس کو پہلے دیکھ لینے کی کوشش کر لیجئے کہ آپ کو میڈیا کے پیچھے کچھ میسیجز نظر آ رہے ہیں یا نہیں نظر آ رہے ہیں, یا آپ سمجھ رہے ہیں کہ نہیں صرف بیچنے کے موڈ میں اس سدن کا کام نہیں ہے, ہمارے خیال میں بہت سارے میسیجز ہیں. تیسرا مسئلہ یہ کہ میڈیا کا کیا تربیت کے سلسلے میں کوئی رول ہے؟ اگر وہ میسیجز نہ بھی ہوں تب بھی تربیت میں بہت رول ہے, اگر وہ میسیجز نہیں بھی ہوتے تب بھی تربیت میں بہت رول تھا, جس کو میں بھی ایکسپلین کرنے کی کوشش کروں گا. چونکہ وہ میسیجز ہیں اب تو پورا تعلق ہے ہی تربیت سے, چونکہ وہ میسیجز ہیں تو پورا تعلق تربیت سے بن جائے گا. اس کی وجہ کیا ہے تھوڑا سا ایکسپلین کرتا ہوں. درود بھیجے گا محمد والے محمد, محمد والے محمد. آپ اسلام کے جو ظاہر ہے, میں اسلام کے تربیتی نظام یہاں پہ نہیں بتاؤں گا, یعنی نہ ٹائم ہے اور نہ یہ ہمارا ٹاپک ہے. جو اسلام کا تربیتی نظام ہے اس میں آپ نے انسانوں کو کسی ایک آبجیکٹو تک پہنچانا ہے, وہاں تک پہنچانے کے لیے جو مین چیز آپ کو چاہیے ایجاد کریں اپنے بچوں کے اندر اور اپنے اندر, وہ کنٹرول ہے. کنٹرول کے بغیر آپ کسی اسلامی ہدف کو حاصل نہیں کر پائیں گے. مثلا آپ سادہ سادہ سی باتیں دیکھ لیں, اگر آپ کے اندر کنٹرول نہیں ہے تو آپ فجر کی نماز بھی نہیں پڑھ سکیں گے, اگر کنٹرول نہیں ہے تو آپ روزہ نہیں رکھ پائیں گے, اگر کنٹرول نہیں ہے فلاں عبادت اخلاقیات کوئی چیز عمل نہیں آئے گی اگر کنٹرول نہیں ہے. ٹھیک ہے, تو سب بالکل واضح سی بات ہے. اچھا میڈیا کا کام کیا ہے؟ میڈیا کا ایک ظاہری کام جو ہے وہ یہ کہ کچھ بیچنا چاہتے ہیں. کیسے بیچنا چاہتے ہیں؟ وہ اس طرح سے بیچنا چاہتے ہیں کہ جو لسٹ آپ کے اندر نہیں ہے وہ اس کو اٹھائیں گے. اگر وہ چیز پہلے ہی بک رہی ہو تو $1,000,000 میڈیا پہ کیوں دے گا کہ وہ اس کو خریدنے کے اوپر ایڈورٹیزمنٹ کرے؟ اس کو معلوم ہے کہ اس نے اپنی پروڈکٹ کے لیے آپ کے اندر کچھ جذبات ابھارنے ہیں. اچھا ان جذبات کو کیسے ابھارنے ہیں؟ لاجیکل تھنکنگ کے ذریعے سے. یعنی ایڈورٹیزمنٹ کیا لاجیکل تھنکنگ کے لیے ہوتے ہیں, یعنی کنزیومرز کے اندر ایک لاجیکل انالیسس کروا کر وہ کہتے ہیں کہ ہماری چیز کو خریدیں؟ کبھی بھی نہیں, کوئی لاجیکل تھنکنگ نہیں ہے اس کے لیے. ان کو سمپلی کیا کرنا ہوتا ہے, ان کو آپ کے اندر کچھ ایموشنز کریٹ کرنے ہوتے ہیں, ان ایموشنز کے ساتھ ایک آرٹیفیشل میسیج یہ آتا ہے کہ آپ یہ چیز بھی خرید لیں. مثلا بہت معذرت کے ساتھ، اگر کسی بہت مشہور ایکٹرس کو لا کر وہ ایک مثال کے طور پر سوپ کا ایڈورٹیزمنٹ بناتے ہیں یا کولڈ ڈرنک کا ایڈورٹیزمنٹ بناتے ہیں، تو کولڈ ڈرنک کی ایفیشنسی سے ایکٹرس کا کوئی تعلق بنتا ہے کیا؟ کبھی بھی نہیں. اس سے اس کا کیا تعلق؟ اس کی ایک فیلڈ ہے، یہ ایک اور علیحدہ مسئلہ ہے. تو یہ ان دونوں کو ملاتے کیوں ہیں؟ صرف یہ کہ آپ کی اس ایکٹریس کی پسند کو دیکھتے ہوئے خدا نہ کرے آپ کے لیے پسند بناتے ہیں کولڈ ڈرنک کے لیے. آپ چونکہ وہ گروپ آف آڈینس اس ایکٹریس کو ایکٹر کو پسند کر رہا ہے، وہاں سے اس کو موو کرواتے ہیں اور لاتے ہیں کس کے اوپر؟ اپنی پروڈکٹ کی طرف. اچھا دونوں کا کوئی ریشنل تعلق ہے، کوئی لاجیکل تعلق ہے؟ نہیں، ایبسولوٹلی کوئی لاجیکل تعلق نہیں ہے. بلکہ تقریباً سب کو شاید پتا ہوگا، تقریباً پتا ہوگا کہ شاید یہ یوز بھی نہ کرے. کوئی ضروری نہیں کہ جو ایڈورٹیزمنٹ میں دکھا رہے ہیں کہ یہ اس نے یہ پہنا ہوا یا یہ استعمال کیا، اس نے واقعاً استعمال بھی کیا ہو، شاید نہیں استعمال کیا ہوگا، لیکن یہ وہ آرٹیفیشل میسج ہے جو چلا جاتا ہے اور کام بھی کرتا ہے، ہٹ بھی کرتا ہے. ورنہ یہ لوگ اتنے بڑے بڑے لوگوں کو اتنے پیسے نہیں دیتے ایڈورٹیزمنٹ میں لانے کے لیے. اچھا آپ سوچیں، سارا کا سارا دھوکا ہے، نہ اس پرسنالٹی کا اس پروڈکٹ سے کوئی تعلق ہے اور نہ اس پرسنالٹی نے حتیٰ اس پروڈکٹ کو استعمال کیا ہوا ہوتا ہے. صرف چند سیکنڈ دکھا کر ایک آرٹیفیشل میسج کریٹ کیا گیا ہے، آپ کے اندر ایک لسٹ کریٹ کی گئی ہے. اچھا اسلام کیا کہہ رہا تھا؟ آپ کنٹرول بڑھائیں اپنا، اور میڈیا جتنا کام بھی کرے گا چیز بیچنے کے لیے وہ آپ کے کنٹرول کو ریڈیوس کرے گا. اگر کچھ نہ ہوتا میڈیا کے اندر، صرف یہ ایک مسئلہ ہوتا تو بھی اسلام کی تربیت کے خلاف تھا. اسلام کنٹرول بڑھانا چاہتا ہے اور میڈیا کنٹرول کو ختم کرنا چاہتا ہے. اگر آپ کا کنٹرول بہت زیادہ ہوا آپ وہ پروڈکٹ نہیں خریدیں گے، لہٰذا آپ کے کنٹرول کو کم کریں گے اور آپ کو ایک ایسی جگہ پہ پہنچا دیں گے. میں صرف مثال کے لیے عرض کر رہا ہوں، جو لوگ میڈیا سے بہت زیادہ وابستہ نہیں ہے، اس کے اوپر ڈیپینڈنٹ نہیں ہے، اس سے ان کا رابطہ اتنا کم ہے، تو شاید ان کو اس پروڈکٹ تک لانے کے لیے 10 سیکنڈ چاہیے ہوں. لیکن جن کا ریگولر تعلق ہے ان کو ایک ایسی جگہ تک پہنچا دیں گے کہ 3 سیکنڈ کے اندر پروڈکٹ بک جائے گی. ان کے کنٹرول کو اتنا نیچے لے آئیں گے کہ ان کے جسے کہتے ہیں وہ بس سامنے کھڑا ہوگا، وہ ٹریگر دبائے گا اور اس نے خرید لینی ہے، وہ اس کمال تک لے آئیں گے. تو وہ جانتے ہیں کہ وہ کیا کر رہے ہیں. میں نے عرض کیا کوئی میسج نہ ہوتا صرف یہ ہوتا تب بھی تربیت کے اصولوں کے خلاف تھا. بہرحال یہ ہمارا میڈیا ہے. اب اور آگے آئیے، میڈیا متاثر کیسے کرتا ہے؟ مثلا وہ تربیت کو ظاہر تربیت کے اندر انوالو ہو گیا ہے، ہمارا جو تربیت کا ایشو ہے وہ کنٹرول کی طرف لے جانے کے لیے ہے، وہ کنٹرول کو ختم کرنے کی کوشش کرتا ہے. اگر کوئی اور میسج نہ ہوتا اور کیا کیا میسیجز ہو سکتے ہیں؟ میں چند چیزیں یہاں پہ صرف لسٹ کر رہا ہوں آپ کے سامنے، اور خاص کر یہ دیکھتے ہوئے کہ ہم جس گروپ کے بارے میں بات کر رہے ہیں اس کے پاس اتنی ڈیپتھ بھی نہیں ہے کہ وہ میڈیا کا انالیسس کر لے. مثلا آپ جن بچوں کی بات کر رہے ہیں کہ وہ میڈیا کے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں اور وہ دیکھ رہے ہیں اور متاثر ہو رہے ہیں، تو میں اس کی ایک مثال عرض کرتا ہوں. کبھی آپ مثال میں یہ سوچیں کہ آپ ایک ریسلنگ کا مقابلہ دیکھ رہے ہیں، اس میں ایک 6 سال کا بچہ ہے اور سامنے 24 سال کا ایک مثال کے طور پر 7 فٹ 8 فٹ کا ایک ریسلر کھڑا ہے. کوئی مقابلہ ہے؟ بہت آسان، کوئی مقابلہ نہیں ہے. اچھا آپ ذرا سوچیے گا، یہ جو 6 سال کا بچہ 8 سال کا بچہ ٹیلی ویژن دیکھ رہا ہے، یہ جو بنانے والے ہیں یہ کون ہیں؟ شاید بنانے والے میں ہیومن سائیکالوجی کے پوسٹ پی ایچ ڈیز بھی ہوں گے. یہ کیا مقابلہ ہے؟ اس بچے سے آپ توقع کر رہے ہیں کہ ان بنانے والوں سے جھگڑ لے جو پوسٹ پی ایچ ڈیز بھی ہوں گے اپنے سبجیکٹ کے اندر؟ آپ توقع کر رہے ہیں یا ہم انتظار کر رہے ہیں کہ وہ بچہ ان میسیجز کو سمجھ لے، انالیسس کر لے اور اس میں سے غلط اور صحیح کو پک کر لے؟ وہ بنانے والے اتنے استاد ہیں کہ آپ بھی اس کام کو نہیں کر پائیں گے، تو آپ بچوں سے توقع کر رہے ہیں کہ وہ یہ کام کریں گے؟ یا مثال کے طور پر یہ جو ایڈورٹیزمنٹ بنتے ہیں، اچھا آپ خود جانتے ہیں، ہم سے بعض لوگ ایڈورٹیزمنٹ ایجنسی کے ہوں گے، یعنی اس انڈسٹری سے تعلق رکھتے ہوں گے، ایک ایک ایڈورٹیزمنٹ کے اوپر بعض اوقات 2-2 ملین $3-3 ملین خرچ ہوا ہوا ہوتا ہے. جس کمپنی نے $3 ملین اپنے پروڈکٹ کی ایڈورٹیزمنٹ پہ لگائے، اس نے کس قسم کی ایکسپرٹیز کو ہائر کیا ہوگا؟ جو ٹاپ موسٹ اویلیبل ہوگی اس کو ہائر کیا ہوگا؟ اس نے اپنے میسج کو کی ایفیشنسی کو کس حد تک پہنچایا ہوا ہوگا؟ اس نے اس حد تک پہنچایا ہوگا کہ وہ جس نے ہائر کیا ہوگا اس نے ایک کرٹیسزم کے لیے اور اس کو چیک کرنے کے لیے ایک اور کمپنی بھی ہائر کی ہوگی कि वो ये चेक करे कि ये जो इसका मैसेज है इसके अंदर स्ट्रेंथ कितनी है। तो ये काम एक्सपर्ट लेवल पे नहीं हो रहा है, ये एक्सपर्ट्स की भी एक्सपर्ट लेवल के ऊपर एक काम हो रहा है, और मुकाबला किससे हो रहा है, 8 साल के एक बच्चे से। तो आप डिज्नीलैंड के जो कार्टून्स देख रहे हैं ये गली कूचों में नहीं बने हैं, ये दुनिया के मशहूर तरीन स्टूडियोज के अंदर बने। इसको दुनिया के अपनी फील्ड के माहिर तरीन लोगों ने बनाया है। अब आप ये चाह रहे हैं कि बच्चा इसको देखे, एनालिसिस करे और सही और गलत को पहचानने के बाद सही मैसेज को पिक करे, गलत को दूर कर ले। ये ताकत हम में और आप में भी नहीं है जो हम बच्चे से तवक्को कर रहे हैं। बस वो कैसे मुतासर करते हैं, एक तो एक स्पेशलिस्ट को उन्होंने रखा हुआ, अपने इल्म की स्ट्रेंथ को इस्तेमाल करेंगे, अलबत्ता वो इल्म जो मस्नूई इल्म आर्टिफिशियल है। क्या निशानियां हम देखें कि हम ये समझें कि ये अब तरबियत में मामला खराब हो गया, ये जा रहा है मामला। बहुत आसान चीजें अर्ज करूं, अलबत्ता मैं खुद उन लोगों में से हूं जो क्या अर्ज करूं, मसलन कई साल हो गया मैंने अपने आप को इससे दूर रखा है। तो मैं जब पहले टॉपिक देख रहा था मैं कह रहा था अजीब है, यानी मुझे वो टॉपिक दे दिया जिसको मैं 3-4 साल से तर्क किए बैठा हूँ, यानी जब मैं मीडिया में इन्वॉल्व नहीं हो रहा हूँ। इसीलिए बहरहाल जैसे ही आप अपने बच्चों को देखें कि ये एडवर्टाइजमेंट के जो सेंटेंसेस है ये बोल रहा है और वो कुछ कर रहा है कि जो कहीं ना कहीं टीवी के ऊपर एडवर्टाइजमेंट की सूरत में रिफ्लेक्ट हो रहे हैं, तो कम से कम एक बात समझ में आ गई, इसके रिफ्लेक्शंस गैर इरादी अन इंटेंशनल रिफ्लेक्शंस वो इसके हाथ से निकल गए, वो उन्होंने ले लिए। मसलन वो बैठा होता है और वो कोई जुमला बोल देता है जो एडवर्टाइजमेंट में आता है। अच्छा यहां पे वो बेचने के लिए बैठा है क्या? नहीं, बेचने के लिए नहीं बैठा, तो ये जुमला क्यों कहा इसने? इसका मतलब है जो इसकी अन इंटेंशनल मूव्स हैं कम से कम वो इसके हाथ से निकल गई हैं, निकल गया। ये पहला स्टेप होगा इस बात की कि इस बच्चे के ऊपर बहुत जबरदस्त अटैक हो गया है। अगर आप संभालने का वक्त है आपके पास तो अभी संभाल लीजिए। अच्छा दूसरे मूव में क्या होगा? पहले मरहले में उसकी जो अन इंटेंशनल मूव्स होंगी, चाहे वो बोले चाहे वो हिले, मसलन जो लोग देखते हैं जाहिर है वो बच्चे के हिलने को देखकर बता सकते हैं ये किस वाली सीन से मुतासर हुआ है, लहजे को देखकर बता सकते हैं कि ये किस सीन से मुतासर हुआ है। और मैंने तो 3-4 साल से छोड़ा हुआ है लिहाजा मैं नहीं बता पाऊंगा कि ड्रेसिंग और हेयर स्टाइल वगैरह वगैरह उन सबको देखकर आसानी बताया जा सकता है ये किस से मुतासर हुआ है। अच्छा उस बच्चे से पूछे आप उससे मुतासर हुए? क्या? नहीं, कभी भी नहीं। सही कह रहे, झूठ नहीं बोल रहा बेचारा, अन इंटेंशनली ऐसा ही होगा। और जैसे आपके बच्चे के साथ ये शुरू हो आप समझ जाइएगा कि अब टाइम निकलने वाला है। अच्छा दूसरे मरहले में क्या काम होगा? दूसरे मरहले में ये होगा कि वो जो कल्चर होगा उसका कल्चर आहिस्ता आहिस्ता हिलना शुरू हो जाएगा। अगर पहले सही हुआ तो अभी उसका कल्चर थोड़ा थोड़ा मूव करेगा। कल्चर मूव कैसे करेगा? मसलन आप देखेंगे कि बिहेवियर चेंज हो रहा है और आपको कुछ समझ में नहीं आएगा ये बिहेवियर चेंज क्यों हो रहा है। जैसे ब्रदर ने मिसाल दी सास बहू की, ये बड़ा अजीब मसला है। यानी अभी जगह पे अश्रम पढ़ रहा था तो मैंने एक मजलिस इस पे रिक्वेस्ट की खवातीन से कि प्लीज स्टार प्लस देखना बंद कर दें वरना आपकी फैमिलीज नहीं बचेंगी। यकीन फरमाइए मैंने पता नहीं कितने डाइवोर्सेस के केसेस को स्टडी किया है और मैंने देखा कि बहुत सो में स्टार्टिंग पॉइंट कम अज कम या तो एंड तक भी टेलीविजन था। बहुत सो में आपके बच्चे आहिस्ता आहिस्ता अपने बिहेवियर में चेंज लेके आएंगे, अनएक्सपेक्टेड चेंज, और उनको आप एहसास कर रहे होंगे लेकिन आपको ये समझ में नहीं आएगा ये आया कहां से। थोड़ा सा गौर कर, अच्छा अगर आप खुद भी देखते होंगे तो आपको फौरन समझ में आ जाएगा कि ये अच्छा ये मुसीबत यहां से आई है। बहरहाल ये आपके सामने एक और सिम्टम आएगा। अच्छा तीसरा काम वो क्या करेंगे? मसलन ड्रेसिंग को चेंज कर पाएंगे, अब उसके रिलेशनशिप बहुत ज़्यादा जो बड़ा काम वो चेंज करेंगे उसके रिलेशनशिप में। मसलन वो किन लोगों से दोस्तियां करेगा मीडिया डिफाइन कर सकता है, बहुत आसानी से डिफाइन कर सकता है। सबसे बड़ी चीज जो कर देंगे वो लाइफ के ऑब्जेक्टिव्स को चेंज कर देंगे, ऑब्जेक्टिव्स ही चेंज हो जाएंगे। तो आप अभी हम बात कर रहे थे तरबियत में उसका असर क्या है, तो हम समझते थे तरबियत में बस इतना असर होगा कि वो कपड़े सही पहनेगा या खराब पहनेगा। नहीं, यहाँ नहीं बात पहुंचेगी। मसलन बच्चियों में हम सोचेंगे पर्दा करेगी या नहीं करेगी, यहाँ पे नहीं रुकेगा मामला। असल जाके यहाँ पे रुकेगा कि उसकी जिंदगी का असल मकसद क्या है, वो ये सब चेंज कर लेंगे। अच्छा वही काम इतनी महारत से करते हैं, हमें एक बात कबूल करनी पड़ेगी, ये लोग हैं उस्ताद, बहुत माहिर हैं। मैं पॉलिटिकल साइंसेस का स्टूडेंट हूँ और पॉलिटिकल साइंसेस का स्टूडेंट होने के नाते मुझे पॉलिटिकल हिस्ट्री पढ़नी पड़ती है। पॉलिटिकल हिस्ट्री में मैं हमेशा एक बात एक्सेप्ट करता हूँ अपने जहन में, 1850 ऑनवर्ड ब्रिटिश फॉरेन मिनिस्ट्री के अंदर जो लोग काम कर रहे थे मास्टर्स थे, चूंकि जो ड्रामा उन्होंने उस वक्त बनाया था, हम आज तक उस ड्रामे से बाहर नहीं निकल पाए। 150 साल हो गए हमें, सब कॉन्टिनेंट 150 साल से उनके बनाए हुए स्क्रिप्ट के ऊपर हिल रहा है। इट वॉज अमेजिंग, बहुत बड़े मास्टर्स थे। तो वो मास्टर्स हैं अपने काम के, वो बहुत आसानी से इस काम को कर सकते हैं, बहुत खूबसूरती से कर सकते हैं। मैं एक मिसाल आपकी खिदमत में अर्ज करता हूँ थोड़े से बैकग्राउंड के साथ। दुरूद भेजेगा मोहम्मद वाले मोहम्मद पर, मोहम्मद वाले मोहम्मद। हम लोग जब ईरान में रह रहे थे तो एक दोस्त था, उसका भाई थोड़ा सा साइकिक केस हो गया, उसको ट्रीटमेंट के लिए पाकिस्तान ले गए, क्यों एक आखान मेडिकल यूनिवर्सिटी के साथ हॉस्पिटल में, आखान हॉस्पिटल में। तो वहाँ पर उसका ट्रीटमेंट हुआ। ट्रीटमेंट इस तरह से था कि डॉक्टर ने कहा, वो एक यंग लेडी थी, उन्होंने कहा कि मैं इसको एक इंजेक्शन लगाऊंगी, सॉर्ट ऑफ ट्रीटमेंट, उसके बाद ये स्पेल आउट करेगा जो इसके अंदर जमा हुआ हुआ है, ताकि हम ये देख पाएं कि इसने किस चीज़ ने इसको बाहर इसके दिमाग को खिसका दिया है। तो उन्होंने कहा कि एक आदमी चाहिए जो इसकी ज़बान बोलता हो, वो फारसी बोलता था। तो बाहर एक हमारे दोस्त थे, वो चले गए उसके साथ। उसने कहा कि देखो, उस खातून ने कहा, अब शर्माना नहीं, ये जो बोले सही सही ट्रांसलेशन करके बताना। इन्होंने कहा कि ठीक है, ये तो ट्रांसलेटर की जॉब ही यही होती है कि वो जो सुने बता दे। बाहर उसने इंजेक्शन लगा दिया, 15-20 मिनट के बाद उसने जो उगलना शुरू किया, तो 5-6 मिनट तक तो ठीक था कि भाई ठीक है, जो बता दिया जो कुछ बता दिया, उसके बाद इसके अवसान खता हो गए कि अब मैं ये कैसे तर्जुमा करूँ। तो उसने फील कर लिया डॉक्टर ने, कहने लगे कि देखो गड़बड़ नहीं करना, जो ये कह रहा है सब बोलो। कहने लगा ये बहुत गलत बातें कर रहा है अब। तो उसने कहा कि तुम्हें सब बोलना पड़ेगा। खैर बड़ी मुसीबत से कहने लगे, आधा घंटा गुजरा और उसने वो दुनिया की वाहियात बातें की जो हम तसव्वुर भी नहीं कर सकते, कहने लगे सब बोलना पड़ गया। कहने लगे आखिर में मैं बड़ा शर्मिंदा उस डॉक्टर के सामने कि यार मैं किस पेशेंट को उठा के ले आया। तो उसने कहा आखिर में, कहने लगे कि देखो अगर ये इंजेक्शन मुझे और तुम्हें लगेगा ना, हम भी यही बोलेंगे। अच्छा ये तो खैर छोड़ दीजिए, यहाँ से मैं एक चीज़ पिक करता हूँ, वही कि जो डॉक्टर्स हैं इस फील्ड के, इनको ये पता है कि ये कितनी देर में ये अपने अंदर की चीज़ों को उगल देगा। ये लगाएंगे, अच्छा इन्होंने क्या लगाया, केमिकल्स डाले ना इसकी बॉडी में, दवाई खिलाई, कुछ टैबलेट्स खिलाए होंगे, इंजेक्शन लगाया होगा, कुछ केमिकल्स डाले ना। इन्होंने केमिकल्स इंसर्ट किए और इनको पता है कि ये केमिकल्स इतनी देर में इसकी बॉडी से केमिकल्स नहीं निकालेंगे, एक्सप्रेशंस निकलवाएंगे और वो इस तरह से निकलेंगे। अच्छा इसको सब दास्तान आखिर तक पता थी कि ये क्या लघवियात बोलेगा, ये सब कुछ करेगा, वो सब उसको पता था। अच्छा इसको ये भी पता था कि अगर ड्यूरेशन कम करना है, फौरन बोले तो क्या करना है, देर से बोले तो क्या करना है, कहाँ लगाऊं तो पेन के साथ बोलेगा, कहाँ लगाऊं तो बगैर पेन के बोलेगा। ठीक है, मैं आपको गारंटी से कह रहा हूँ, इस वक्त की सोशल साइंसेस इस स्टेज पर है कि जो ये डॉक्टर उसकी बॉडी के साथ और इमोशंस के साथ कर रहा था, सोशल साइंटिस्ट सोसाइटी के साथ कर सकता है। मैं आपको कन्फर्म अर्ज कर रहा हूँ, यानी अगर आप मुझे एक पैनल ऑफ सोशल साइंटिस्ट दे दें, ठीक है, और मुझसे ये कहें कि 5 साल के अंदर इस सोसाइटी को वायलेंट बिहेवियर के ऊपर लेकर आना है, और 5 साल के अंदर ऐसा लेके आना है कि 5 साल तक तो ना फटे, 5 साल बाद फटे, तो मैं आपको ऐसा प्रोग्राम बना के दूंगा कि हो जाएगा। अगर आप मुझसे कहना कि नहीं हम 5 साल बाद नहीं फाड़ना है इसको, दूसरे साल से ही कुछ ना कुछ फटना शुरू हो जाए, तो ये भी हो जाएगा। अगर आप कहें कि नहीं स्मूथली चले, पेनफुली चले, फौरी चले, देर से चले, ये सब हो सकता है, कोई इशू नहीं है। एक सोशल साइंटिस्ट इस काम को बहुत महारत के साथ कर सकता है, अलबत्त पैनल ऑफ सोशल साइंटिस्ट चाहिए होगा, तो ये सब काम हो सकते हैं। आप इतने बड़े एक्सपर्ट्स के बनाए हुए मीडिया के सामने बैठे हुए हैं। कल नाइजीरिया में एक फसाद हुआ है। कहां से शुरू हुआ था, बिलियर्ड का एक मैच हो रहा था, गेम हुआ था टेबल के ऊपर, एक मुसलमान प्लेयर था और जो क्लब था वो क्रिश्चियन का था। मुसलमान ने पैसे पे किए या नहीं किए उसका क्रिश्चियन से झगड़ा हो गया। उसके बाद इस केस के अंदर अब तक 4 आदमी कत्ल हो चुके हैं। स्ट्रिक्ट कर्फ्यू लगा दिया गया है, मुख्तलिफ जगहों पर बैरिकेड लगा कर मुख्तलिफ मोहल्लों को अलहदा किया है कि भाई ये और ना फैल जाए। 30 से ज़्यादा लोग ज़ख्मी हो गए। ये जो सोशल साइंटिस्ट हैं, ये एक्सपर्ट्स हैं, किस टाइम पे किस सोसाइटी को प्रोवोक करना है, किस टाइम पे किस सोसाइटी को बिठाना है, इनके हाथ में। और जो मेजर टूल है इंसर्ट करने का वो मीडिया है, क्योंकि इसके जरिए वो इंजेक्शन लगाते हैं जो बॉडी की हर पार्ट पर एक ही वक्त में पहुंच जाता है। बस दूसरे इंजेक्शन भी हैं जो स्लोली मुख्तलिफ जगहों से आते हुए किसी तक पहुंचते हैं, लेकिन ये वो एक ऐसा पीस है जो एक ही वक्त में पूरी बॉडी पार्ट्स के पहुंच जाता है। तो आप इस मीडिया के सामने उनकी ये अहदाफ हैं, वो जिंदगी को तब्दील करेंगे, कम से कम कन्फ्यूजन इतनी बड़े पैमाने पर डाल देंगे कि बच्चा नहीं समझ पाएगा। चलिए साहब, ये तो तरबियत में मीडिया का रोल हो गया। मेरा टॉपिक इतना ही था, इससे ज़्यादा नहीं था, लेकिन मैं इसके अंदर कुछ एडिशंस कर रहा हूँ और ये बताने के लिए कि हम इसका मुकाबला कैसे कर सकते हैं। दुरूद भेजेगा मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। इसी दौरान में मैंने शायद आपकी खिदमत में ये ना कहा हो, इसको भी मैं बिल्कुल पूरी तरह से सामने करके कह दूँ, मीडिया की जो जनरल ट्रिक्स हैं इस वक्त, उसके अंदर दो ट्रिक्स सबसे बड़ी हैं। इस वक्त जो जनरल ट्रिक्स हैं वो एक वायोलेशन है और दूसरा वल्गरिज्म है, फाशा। ये दो बड़ी ट्रिक्स हैं। अच्छा, ये दो बड़ी ट्रिक्स क्यों हैं इनके पास, और इन दोनों का ज़बरदस्त कॉम्बिनेशन जो मुझे अभी तक समझ में आया है, रेसलिंग है। ज़बरदस्त कॉम्बिनेशन कि जिसके अंदर वल्गरिज्म और जिसके अंदर वायोलेशन पीक पर आया हुआ होता है। तो आप में जो लोग यहाँ बैठे हैं और रेसलिंग पाबंदी से देखते हैं, मैं आपको सुकून से कह रहा हूं कि आप पेशेंट हैं, आप मरीज हैं, आपको अपना इलाज करना होगा। ठीक है, कहने में तो कोई हरज नहीं, किसी का नाम भी नहीं लिया, ठीक है, किसी की बेइज्जती तो नहीं हुई ना, लेकिन मैं आपको गारंटेड कह रहा हूं कि आप अब तक मरीज बन चुके हैं। जो अच्छा, ये हो क्या रहा है, मैं आपसे कहता हूं मीडिया को निकाल दीजिए। एक आदमी मीडिया में ड्रामे देखता है, फिल्म्स देखता है, मसलन रेसलिंग देखता है, ये देखता है, वो देखता है, एक आदमी ये सब नहीं देखता। ठीक है, जो पीक ऑफ इमोशंस मीडिया देखने वाले की जिंदगी में आते हैं, नॉर्मल लाइफ गुजारने वाले की जिंदगी में ये पीक ऑफ इमोशंस कितनी दफा आते हैं। मसलन एक आदमी कोई मूवी देख रहा है, मूवी देखते देखते अचानक इतना खुल के हंसता है, भाव के हंसता है, एक दफा अचानक, बहुत औरतों में तो खैर बहुत ज्यादा होता है, मर्दों में भी होता है, रोने लगते हैं। ठीक, एक दफा अचानक उसके दिल में एक तारीफ उभरती है, क्या बात है साहब, क्या काम किया। एक दफा कहता है, ओ बदबख्त, क्या हरकत की है। अच्छा, ये जो पीक ऑफ इमोशंस हैं, जो मीडिया नहीं देखता, उसकी जिंदगी में कितनी दफा आते होंगे और उसकी जिंदगी में कितने दफा आते होंगे जो देखता है। मेरे ख्याल में 100 का भी कोई रेशो नहीं होगा, शायद 1000 और 1 का रेशो आ जाएगा। मतलब अगर मैं मीडिया नहीं देखता तो मेरे अंदर ये पीक ऑफ इमोशंस शायद 1 हफ्ते में 1 दफा कभी आता होगा, क्योंकि नॉर्मल लाइफ में ऐसा नहीं होता। और वो जो मीडिया देखता है उसकी तो हर 2-3 घंटे पे ऐसी चीज आ जाती होगी जो उसके इमोशंस को पीक पे ले जाती होगी। अब मुझे बताएंगे ये अभी भी बैलेंस्ड लाइफ गुजार लेगा क्या? कैसे बैलेंस लाइफ? ये आपने जो देखा है आजकल के जवानों के अंदर एक मुसीबत, लड़का और लड़की दोनों एक नजर में मुसीबत में फंस जाते हैं और वो पता भी नहीं चलता कब मुसीबत में फंस गए। क्यों हुआ है? उसकी वजह यह है कि इमोशंस अपनी जगह से हिल चुके हैं, डिसबैलेंस क्रिएट हो चुका है, इतने ज्यादा फ्रेजाइल हैं कि कुछ नहीं पता कब हिल जाएंगे और कब कहां पहुंच जाएंगे। ये सब मीडिया कर लेगा, तो उनके हाथ में बहुत कुछ है, उन्होंने पता नहीं क्या कुछ कर डाला है। अच्छा जनाब, अब मीडिया को क्लासिफाई कर लीजिए, टाइम खत्म हो रहा है, मीडिया को क्लासिफाई करते हैं। मेरे ख्याल में जो पीछे के मैसेजेस हैं, जो मीडिया अपने मैसेजेस को पीछे से देता है, उसको अगर निकाल दूं, अभी मैं उनकी बात नहीं कर रहा, तो जो सामने सामने के मैसेजेस हैं वो 2-3 तरह के होते हैं। या तो वो न्यूज़ है, या वो इंफॉर्मेशन और नॉलेज के ऊपर बेस कर रहा है, या वो एंटरटेनमेंट के ऊपर है। तो मैं इनको 3 कैटेगरीज में डाल सकता हूँ। या तो वो आपको न्यूज़ दे रहा है, न्यूज़ और एनालिसिस दे रहा है, पॉलिटिकल इवेंट्स जनरली या कोई भी सोशल न्यूज़ है, और दूसरा या वो कोई इंफॉर्मेशन दे रहा है, मिसाल के तौर पर फर्स्ट करें नेशनल ज्योग्राफिक जो ज़्यादातर इंफॉर्मेशन के ऊपर है, या वो तीसरे मरहले में एंटरटेनमेंट है। सही है, एंटरटेनमेंट में दो तरह से हो सकता है, या वो एंटरटेनमेंट स्पोर्ट्स के ज़रिए दे रहा होगा, या वो स्पोर्ट्स के अलावा और किसी तरीके से दे रहा होगा। जो मुझे अभी तक समझ में आया है, अगर आप अपनी लाइफ में मीडिया से स्पोर्ट्स के अलावा जो एंटरटेनमेंट है वो ले रहे हैं, ये सबसे ख़तरनाक काम है। सबसे ख़तरनाक काम यहीं पर है, यानी कोई आदमी मीडिया को टूल ऑफ एंटरटेनमेंट में इस्तेमाल करे, और वो एंटरटेनमेंट स्पोर्ट्स से ना आते हों, स्पोर्ट्स के अलावा ड्रामास हैं, फिल्म्स हैं। अच्छा, हत्ता मैं इसमें एडवर्टाइजमेंट को भी शामिल करूँगा। लोग आजकल एडवर्टाइजमेंट से ही मज़े लेते हैं, क्यों? उसके अंदर वो कुछ दिखाई दे रहा होता है जो अंदर से दिल देखने की ख्वाहिश कर रहा है। अच्छा, मीडिया की एक अजीब हरकत, में अजीब हरकत अर्ज करूँ की खिदमत में, कोई बाज़ औक़ात कहता है कि मसलन लोग इस कितना गंदी चीज़ें दिखाते हैं, लोग एतराज़ कर रहे हैं, बहुत गंदी चीज़ें दिखाते हैं ये लोग। मैं आपको मुतमईन होकर कह रहा हूँ, अगर हम गंदी चीज़ें देखने की ख्वाहिश ना करते हों तो ये कभी नहीं दिखाएंगे। ये दिखाते ही वो हैं जिसकी आपके अंदर ख्वाहिश थी और बाहर नजर नहीं आ रहा है आपको, ये दिखाते ही वो ही हैं। अच्छा, अगर आप ये कहें ना कि हमारी अंदर की ख्वाहिश ये है कि हमें कुरान करीम दिखाया जाए, और वाकई आप सच्चे हों, तो यकीन फरमाइए स्टार प्लस 24 घंटे कुरान करीम दिखाएगा, क्योंकि उसको व्यूअर्स चाहिए, उसको व्यूअर्स चाहिए, उसको अपने प्रोडक्ट बेचनी है, उसको चैनल दिखाना है। तो अगर अभी यही तो मसला है कि देखिए हमारे मुल्क के अंदर पाकिस्तान में एक ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज है, एक ग्रुप है, नाम लेने में क्या हर्ज है, ARY। ये MTV भी चलाता है, म्यूजिक टीवी भी चलाता है, ये ARY ड्रामे भी दिखाता है, फिल्में भी दिखाता है। अच्छा, यही ARY QTV भी चलाता है, कुरान TV। अच्छा, ये क्या भाई, ये जो ARY का फाउंडर है वो कहते हैं भाई वो जो ARY का फाउंडर है वो जरा मौलवी टाइप का आदमी है, इसलिए उसने QTV भी रखा हुआ है। तो भाई वो MTV क्यों रखा था उसने, अपनी बेगम की वजह से रखा था उसने, ये क्या बात हुई? असल इसके और इसकी बेगम का कोई मसला नहीं है, मसला सारा ये पैसा जहां से भी आए वो सब लेना है। कुछ दीनदार लोग हैं जिनको दीन देखना है, उनके लिए उसने QTV बना दिया। कुछ लोगों ने ये देखना है, उनके लिए उसने MTV बना दिया। कुछ लोगों ने न्यूज़ देखनी है, उसने वो बना। अगर आपके दिल में देखने की ख्वाहिश ना हो तो कभी भी मीडिया पे नहीं आएगा वो। तो अगर आप ये चाहते हैं मीडिया से फाहशा ख़त्म हो जाए, तो उसका एक रास्ता ये कि अपने दिलों को पाकीज़ा कर लें, वहाँ से खुद ब खुद ख़त्म होगा। और जब आप इस पाकिजगी को स्प्रेड करेंगे सोसाइटी के अंदर, तब ये मुसीबत ख़त्म होगी, वरना ये ऐसी ही चलेगी। अलबत्ता अगर इसके ऊपर ऐड कर लें कि उनके कुछ हिडन एजेंडाज भी हैं, तो फिर वो कभी भी ख़त्म नहीं होंगे। ज़ाहिर है अगर उनके हिडन एजेंडाज हैं और उस हिडन एजेंडा के अंदर ये है कि उन्होंने वल्गरिज्म को फैलाना है, सोसाइटी को करप्ट करने के लिए, उनको मशगूल रखने के लिए, उनको इस बात से बेखबर करने के लिए कि उनके राइट्स को कैसे पामाल किया जा रहा है, तो फिर वो कभी भी ख़त्म नहीं करेंगे। अच्छा, अब हल क्या है साहब? एक बात तो ये थी कि आप इंटरटेनमेंट में इस्तेमाल करना अगर बंद नहीं करेंगे, आप इनके हाथ में स्लिप हो जाएंगे, आपकी ज़िंदगी तबाह हो जाएगी। अच्छा, मुमकिन है कोई ये कहे भाई बात बच्चों की हो रही थी, जो अभी मौलाना साहब ने कहा वो सबसे बड़ी बात है। आप जब तक अपने घर से ख़त्म नहीं करेंगे, ये मसला ख़त्म नहीं होगा। अच्छा, अगर आप ख़त्म कर भी देंगे अपने घर से, तब ये होगा कि टकराव बनेगा, बच्चा जाकर स्कूल्स में कुछ और देखेगा, रोड्स पे कुछ और देखेगा, घर में कुछ और देखेगा। लेकिन अगर आपने घर से भी ख़त्म नहीं किया, तो फिर तो सारी जगह एक ही मैसेज है, फिर तो कोई मसला ही नहीं है उसके, वो नहीं बच पाएगा फिर। तो आपको अपनी ज़िंदगी से ख़त्म करना पड़ेगा। उस ज़िंदगी में ख़त्म करने के लिए जो मुझे अभी तक समझ में आया है वो ये कि आप एंटरटेनमेंट को कम अज़ कम अपनी लाइफ से, TV से डिटैच कर लीजिए, इस मीडिया से डिटैच कर लीजिए, आपका एंटरटेनमेंट कहीं और से होना चाहिए। अच्छा, अभी मैं किसी को कहता हूँ तो एक वो लोग ये कहते हैं मान साहब फिर ज़िंदगी में बचेगा क्या, यानी अगर ये निकल गया फिर ज़िंदगी में है क्या? अच्छा, ऐसा क्यों हो रहा है? हो इसलिए रहा है कि हम आर्टिफिशियल एंटरटेनमेंट के इतने आदि हो गए हैं, इतने आदि हो गए। मिसाल के तौर पर डिब्बे का दूध पी पी कर खालिस दूध पीने का अब हमारे लिए जायका ही नहीं है, हम लोग ऐसे हो गए। तो ये है कि थोड़े अरसे अगर आपको अपने आप को इससे निकाल लें तो फिर असली जिंदगी का मजा काफी है, बहुत है। फिर मतलब असली जिंदगी का मजा क्या है, दो चार जुमले बहुत माजरत के साथ, जिसने हमेशा मॉडल्स को देख कर मजे लिए हों उसको घर में मजा नहीं आएगा। जरा मॉडल्स को देखना बंद करो ताकि अपनी फैमिली से भी कुछ मजे लेना सीखो। वाकई है आर्टिफिशियल एंटरटेनमेंट, ड्रामे देख देख कर, फिल्में देख देख कर अपने आप को इमोशंस में एक ऐसी जगह पे पहुंचा दिया है जिसका जिंदगी से कोई ताल्लुक नहीं है। अब इसको असली रिश्तों में कोई मजा नहीं आएगा। अगर वहां से निकाले अपने आप को तब इसको समझ में आएगा कि अच्छा बच्चों के साथ बैठ के बात करने में कोई मजा है, वरना ये क्या करेगा, ये घर आएगा टेलीविजन खोलेगा सामने बैठ जाएगा पाँव पे पाँव रख के 2 घंटे तक या चैनल चेंज करता रहेगा और उसके बाद या कोई और चीज़ देख के घर फिर सो जाएगा। फिर अच्छा ये समझ रहे हैं मैं ये काम कर रहा हूँ, तो अगर बच्चे आकर इस वक्त इससे कहना कि हमारे साथ बैठे हैं आप, तो कहेगा नहीं अभी मैं बाद में आऊँगा, ये क्या कर रहा है, ये समझ रहा है मैं ये काम कर रहा हूँ, और जो ज़िंदगी का असली मज़ा था वो सब मिस कर रहा है। उसके बाद ये बूढ़ा हो जाएगा और बच्चों से कहेगा बेटा कभी हमारे पास भी बैठा करो, अब उनकी मजे की बारी है। काश हम ये लूप तोड़ दें यहां पर और अपनी फैमिली के साथ बैठकर एंजॉय करें। बाहर लेके जाइए किसी अच्छी जगह पर, अगर आपको दुबई में मिल जाए मोहम्मद, अपनी फैमिली को बचाने के लिए मीडिया के स्पेल से बाहर निकलें, आपकी फैमिली जिंदा हो जाएगी, आपको अपनी फैमिली में मज़ा आएगा और आपके बच्चों को एक नई लाइफ मिलेगी। हम लोग आर्टिफिशियल ज़िंदगी में इतने मगन हो गए हैं, हमारी अटैचमेंट सारी उन आर्टिफिशियल से हो गई है। आप देख रहे हैं मैं जब भी किसी घर में जाऊं, खुदा ना करे उस घर के अंदर किसी बच्चे की कबर्ड के अंदर या कहीं पे शेल्फ पे कोई किसी एक्टर का पोस्टर लगा होता है, तो मैं सोचता हूँ ये बेचारा एक और है जो आर्टिफिशियल लाइफ की नज़र हो गया। इसको नहीं पता इस एक्टर की लाइफ क्या है, इसने इसकी आर्टिफिशियल लाइफ देखी है और उसमें ये इसका हीरो है। ये सब ड्रामा है, हमें और आपको पता है सबका सब ड्रामा है। ना उसका हंसना हंसना है ना उसका रोना रोना है, सबका सब जाली है, लेकिन सब फंस गए उसके अंदर। तो उससे निकलिए, जिंदगी के असली मैदान में आइए। अच्छा उसके बाद क्या करना चाहिए, 2-3 काम होने चाहिए। एक तो ये कि हमारे पास कोई पॉजिटिव मीडिया होना चाहिए। पॉजिटिव मीडिया में क्या हो सकता है मैं बदतरीन से मिसाल तो शुरू करता हूँ। मसलन मेरे बेटे ने खुद ये तरीक़ेकार निकाला, वो क्या वो नेशनल ज्योग्राफिक बहुत देखता था। मैं उससे रिक्वेस्ट करता हूँ, बेटे देखो तुम नेशनल ज्योग्राफिक ज़रूर देखो, अच्छा है तुम्हारी मालूमात के लिए अच्छा है, लेकिन इन बिटवीन ये जो एड्स आते हैं तुम्हारे लिए तबाह कौन है, कम अज़ कम इससे बचो। कहने का मैं क्या कर सकता हूँ, फिर उसने एक तरीक़ेकार निकाला और मैंने उसको नेट दिलवाया, स्पीड अच्छा स्पीड का नेट, तो वो जो कुछ भी देखना चाहता है कहीं ना कहीं से नेट से डाउनलोड करके उसको ऑफलाइन देखता है। कहता है इसमें कम से कम एक फ़ायदा है, इसमें एडवर्टाइजमेंट नहीं आ रहा है, जान छुट गई। ये एक तरीका हो सकता है कि भाई ठीक है हम कुछ चीज़ें लाएं, जो भी देखना चाहते हैं बच्चे कम अज़ कम उनको एडवर्टाइजमेंट की जद में मत रखिएगा। आप एडवर्टाइजमेंट के भूत से नहीं बच पाएंगे, ये वो चीज़ नहीं है जो आप उससे निकल पाएंगे, और आप अपनी ज़िंदगी का खुद भी जायज़ा ले सकते हैं। बस एक काम जो कम अज़ कम करें वो ये कि किसी तरह एडवर्टाइजमेंट से बचाने के लिए इनको, अगर आप कहते हैं मुझे इन्फॉर्मेशन लेनी है, अगर आप कहते हैं मुझे नॉलेज चाहिए और वो नॉलेज यहीं से मिल सकती है, तो उसका तरीक़ाकार ये हो सकता है जो मैंने अभी आपकी खिदमत में अर्ज़ किया। तो हम एक अच्छी मीडिया की लाइब्रेरी को यहाँ पर रिकमेंड करेंगे, बहुत अच्छी मीडिया की लाइब्रेरी हो जहाँ पर लोग यहाँ पर आकर वो जो कुछ उनको देखने की चीज़ें ढंग की चीज़ें वो यहाँ पर अवेलेबल हों और लोग उसको देख सकें। मुमकिन है कि पहले से भी हो, हमारे जहन में अभी अचानक आया। दूसरी बात जो समझ में आती है वो ये कि पॉजिटिव मीडिया होना चाहिए, उसके साथ मीडिया से हटकर पॉजिटिव एक्टिविटी। अच्छा अब ये जो जुमला ये कहना बहुत आसान है, जब हम कहते हैं पॉजिटिव एक्टिविटी तो हमारे साथ ये होता है कि हम एक फुटबॉल क्लब खोलते हैं, उस फुटबॉल क्लब के अंदर बच्चे आना शुरू होते हैं, शुरू में वो फुटबॉल खेलने के लिए आ रहे होते हैं, फिर आहिस्ता आहिस्ता पता चलता है कि वो जो मीडिया से निकल कर आए थे वो अभी भी मीडिया में लगे हुए हैं और हमारी अच्छी टीम को भी लेके बैठ गए। हमें कुछ इस तरह से करना पड़ेगा कि पॉजिटिव एक्टिविटी भी कहीं एक्सप्लॉयटेशन का एक और चैनल ना बन जाए, इसको कुछ अच्छे तरीके से, जो टाइम बिल्कुल नहीं है हमारे पास। और तीसरी बात थी अवेयरनेस। अवेयरनेस का तरीका कार्य होगा, जैसे अभी ये कंपेन हो रही है, ये जो काम हो रहा है वो क्या हो रहा है, एक अवेयरनेस का एक मेथड है, टूल है। आप कुछ अवेयरनेस हासिल कर लीजिए और जो बेहतरीन काम कर सकते हैं अपने बच्चों के साथ डिस्कस करते रहिए। आप लोगों के पास डिस्कशन का टाइम नहीं है, लेकिन आप इस काम को अगर नहीं करेंगे, आप अपने बच्चों के अंदर अवेयरनेस ईजाद नहीं कर पाएंगे। आपको अपने बच्चों के साथ डिस्कस करना पड़ेगा, और वो डिस्कस जो है वो अथॉरिटेटिव नहीं हो, बिल्कुल बराबर की बुनियादों के ऊपर डिस्कशन होना चाहिए, जिसके अंदर बच्चे को हम लॉजिकली बता सकें, और एक खास एज ग्रुप के बाद उसको समझ में आना शुरू हो जाता है। यानी जो मेरा अपना तजुर्बा है, जो मुझे समझ में आता है, मेरे चार बच्चे हैं अल्हम्दुलिल्लाह, और उनसे जो मैं समझ पा जाऊँ वो ये कि तकरीबन क्लास 6 ऑनवर्ड बच्चा काफ़ी चीज़ें समझना शुरू कर देता है। लिहाजा अगर आप उसको कहीं समझाना चाहें कि देखो ये जो मीडिया में ये हुआ ना, ये इसने इस तरह से तुम्हारे साथ कुछ गड़बड़ की है, और तुम्हारी ज़िंदगी में जो फला मूव आया है वो शायद इतना पॉजिटिव नहीं था, अलबत्ता उसके अपने तरीके से, उसको अपने अंदाज में, तो मुझे यूँ लगा कि डिस्कशन बहुत इंपॉर्टेंट है। आपका डिस्कशन बच्चों के लिए बहुत हेल्पफुल है। और आखिर में वही बात जो मौलाना साहब ने कही वो ये कि अगर आप और मैं खुद रास्ते पर नहीं हैं, अगर बच्चे ने हमारी ज़िंदगी में एक पॉइंट पकड़ लिया वीकनेस का, तो समझ लें अब आप जितने बड़े अफलातून अरस्तू हैं वो नहीं सुनेगा आपकी बात, क्योंकि वो ये कहेगा कि भाई मुझे तो रोकते हैं और ख़ुद ये काम करते हैं। अच्छा, वो बहुत छोटी सी वीकनेस भी हो सकती है, मतलब वो क्या वीकनेस हो सकती है, वो ये कि आप अपने नौकरों के ऊपर चिल्लाते हैं। आप उससे कह रहे होंगे बेटा ये देखो ये चीज़ जो तुम देख रहे हो ना टेलीविज़न, ये गलत है, ये जो उल्टी सीधी चीज़ें देखते हो बिल्कुल गलत है। वो ये नहीं कहेगा आप भी तो देखते हो, कहेगा ये भी तो करते हैं, वो गलत नहीं होता क्या? अच्छा, इन दोनों का कोई ताल्लुक है? नहीं, कोई ताल्लुक नहीं है। उसके जहन में एक्सक्यूज ये आएगा, कुछ गलत काम ये करते हैं, कुछ गलत काम मैं करता हूं, मैं इनकी तरह गलत हरकतें नहीं करता। ज्यादा से ज्यादा वो ये कहेगा, और जाहिर है इसमें कुछ शैतान की कार्रवाई भी होगी थोड़ी बहुत, कि उसको प्रोवोक कर रहा होगा, लेकिन आपको अपने कैरेक्टर के ऊपर बहुत अच्छा कंट्रोल करना पड़ेगा, तब कहीं जाकर मैं और आप अपने बच्चों के ऊपर कुछ मेहनत कर पाएंगे। मुझे यही अराइज़ अर्ज़ करने थे, और इंशाअल्लाह जैसे कि अभी हमारे पास है शेड्यूल क्वेश्चन आंसर का, अगर ऐसे शेड्यूल के लिए कोई टाइम बचा है, बहरहाल हम हाज़िर हैं। आपकी समाअत का शुक्रिया, दुरूद भेजेगा मोहम्मद वाल मोहम्मद पर।